पृष्ठ संख्या 198, कविता पटकथा। जब मैं बाहर आया, मेरे हाथों में एक कविता थी और दिमाग में आतों का एक्सरे। वह काला धब्बा जो कल तक एक शब्द था, खून के अंधेरे में दवा की शीशी का ट्रेडमार्क बन गया था। औरतों के लिए गैर जरूरी होने के बाद अपनी ऊब का दूसरा समाधान ढूंढना जरूरी है, मैंने सोचा, क्योंकि शब्द और स्वाद के बीच अपनी भूख को जिंदा रखना जीव और जांग के स्थानिक भूगोल की वाजिब मजबूरी है। मैंने सोचा, और संस्कार के वर्जित इलाकों में अपनी आदतों का शिकार होने से पहले ही बाहर चला आया। बाहर हवा थी, धूप थी, घास थी, मैंने कहा आज़ादी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यही कहा था, मेरी नस नस में बिजली। पृष्ठ संख्या 199 दौड़ रही थी, उत्साह में खुद मेरा मन मुझे अजनबी लग रहा था, मैंने कहा आज़ादी। और दौड़ता हुआ खेतों की ओर गया, वहाँ कतार के कतार अनाज के अकुएं फूट रहे थे, मैंने कहा, जैसे कसरत करते हुए बच्चे, तारों पर चिड़ियाँ चहचहा रही थी, मैंने कहा, कांसे की बजती हुई घंटियां, खेत की मेड़ पार करते हुए मैंने एक बैल की पीठ थपथपाई, सड़क पर जाते हुए आदमी से उसका नाम पूछा और कहा बधाई। घर लौट कर मैंने सारी बत्तियां जला दी, पुरानी तस्वीरों को दीवार से उतार कर उन्हें साफ किया और फिर उन्हें दीवार पर उसी जगह टांग दिया। मैंने दरवाजे के बाहर एक पौधा लगाया और कहा वन महोत्सव, और देर तक हवा में गर्दन उछका उछका कर लंबी लंबी सांसें खींचता रहा, देर तक महसूस करता रहा कि मेरे भीतर। पृष्ठ संख्या 200, वक्त का सामना करने के लिए औसतन जवान खून है, मगर मुझे शांति चाहिए, इसलिए खाली दरबे में एक जोड़ा कबूतर लाकर डाल दिया। गूं गुटर गूं गूं गुटर गूं, और चहकते हुए कहा, यही मेरी आस्था है, यही मेरा कानून है। इस तरह जो था उसे मैंने जी भर कर प्यार किया, और जो नहीं था उसका इंतजार किया, मैंने इंतजार किया। अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा, अब कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा, अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, कोई किसी को नंगा नहीं करेगा। अब यह जमीन अपनी है, आसमान अपना है, जैसा पहले हुआ करता था। सूर्य हमारा सपना है। मैं इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता। पृष्ठ संख्या 201, संस्कृति, शांति, मनुष्यता। इस सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुशफहम इरादे थे, सुंदर थे, मौलिक थे, मुखर थे। मैं सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, मतदान होते रहे। मैं अपनी सम्मोहित बुद्धि के नीचे उसी लोकनायक को बार बार चुनता रहा, जिसके पास हर शंका और हर सवाल का एक ही जवाब था, यानी कि कोट के बटन होल में महकता हुआ एक फूल गुलाब का। वह हमें विश्व शांति और पंचशील के सूत्र समझाता रहा, मैं खुद को समझाता रहा, जो मैं चाहता हूँ वही होगा, होगा आज नहीं तो कल, मगर सब कुछ सही होगा। भीड़ बढ़ती रही, चौराहे चौड़े होते रहे, लोग अपने अपने हिस्से का अनाज खाकर निरापद भाव से, बच्चे जनते रहे, योजनाएं चलती रहीं। पृष्ठ संख्या 202, बंदूकों के कारखानों में जूते बनते रहे, और जब कभी मौसम उतार पर होता था, हमारा संशय हमें कोंचता था, हम उत्तेजित होकर पूछते थे, यह क्या है, ऐसा क्यों है, फिर बहसें होती थी। शब्दों के जंगल में हम एक दूसरे को काटते थे, भाषा की खाई को जुबान से कम और जूतों से ज्यादा पाटते थे, कभी वह हारता रहा, कभी हम जीतते रहे, इसी तरह नोक झोंक चलती रही, दिन बीतते रहे, मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया, मेरा सारा धीरज युद्ध की आग से पिघलती हुई बर्फ में बह गया। मैंने देखा कि मैदानों में नदियों की जगह मरे हुए सांपों की केचुले बिछी हैं, पेड़ टूटे हुए राडार की तरह खड़े हैं, दूर दूर तक कोई मौसम नहीं है, लोग घरों के भीतर नंगे हो गए हैं और बाहर मुर्दे पड़े हैं, विधवाएं तमगा लूट रही हैं। पृष्ठ संख्या 203, सधवाएं मंगल गा रही हैं, वन महोत्सव से लौटी हुई कार्य प्रणालियाँ अकाल का लंगर चला रही हैं, जगह जगह तख्तियाँ लटक रही हैं, यह शमशान है, यहाँ की तस्वीर लेना सख्त मना है। फिर भी इस उजाड़ में कहीं कहीं घास का हरा कोना कितना डरावना है। मैंने अचरज से देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, बारूद का सबसे बड़ा गोदाम है, अखबार के मटमैले हाशिए पर लेटे हुए एक तटस्थ और कोढ़ी देवता का शांतिवाद नाम है, यह मेरा देश है, यह मेरा देश है। हिमालय से लेकर महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है, जहाँ हर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेर है। यह मेरा देश है और यह मेरे देश की जनता है। जनता क्या है? क्या शब्द? सिर्फ एक शब्द है, कुहरा और कीचड़ और कांच से बना हुआ एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए, पृष्ठ संख्या 204, अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। एक पेड़ है जो ढलान पर हर आती जाती हवा की जुबान में हा हा करता है, क्योंकि अपनी हरियाली से डरता है। गांवों में गंदे पनालों से लेकर शहर के शिवालों तक फैली हुई कथाकली कि एक अमूर्त मुद्रा है, यह जनता, जनतंत्र में उसकी श्रद्धा है, अटूट है। उसको समझा दिया गया है, यहाँ ऐसा जनतंत्र है जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। कैसी विडंबना है, कैसा झूठ है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है, जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है, अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है। पृष्ठ संख्या 205, तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है, जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है, यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। मैं सोचता रहा और घूमता रहा, टूटे हुए पुलों के नीचे, वीरान सड़कों पर, आंखों के अंधे रेगिस्तानों में, फटे हुए पालों की अधूरी जल यात्राओं में, टूटी हुई चीजों के ढेर में, मैं खोई आज़ादी का अर्थ ढूंढता रहा। अपनी पसलियों के नीचे, अस्पतालों में, बिस्तरों पर, नुमाइशों में, बाजारों में, गांवों में, जंगलों में, पहाड़ों पर, देश के इस छोर से उस छोर तक उसी लोक चेतना को बार बार टेरता रहा जो मुझे दोबारा जी सके, जो मुझे शांति दे सके। पृष्ठ संख्या 206, मेरे भीतर बाहर का जहर खुद पी सके। और तभी सुलग उठा पश्चिमी सीमांत, ध्वस्त ध्वस्त, ध्वांत ध्वांत। मैं दोबारा चौंक कर खड़ा हो गया, जो चेहरा आत्महीनता की स्वीकृति में कंधे पर लुढ़क रहा था, किसी झंझनाते हुए चाकू की तरह खुलकर कड़ा हो गया। अचानक अपने आप में जिंदा होने की यह घटना इस देश की परंपरा की एक बेमिसाल कड़ी थी, लेकिन इसे साहस मत कहो। दरअसल यह पुट्ठों तक चोट खाई हुई गाय की घृणा थी, जिंदा रहने की पुरजोर कोशिश जो उस आदमखोर की हविस से बड़ी थी, मगर उसके तुरंत बाद मुझे झेलनी पड़ी थी सबसे बड़ी ट्रेजिडी अपने इतिहास की, जब दुनिया के स्याह और सफेद चेहरों ने विस्मय से देखा कि ताशकंद में समझौते की सफेद चादर के नीचे एक शांति यात्री की लाश थी, और अब यह किसी पौराणिक कथा के उपसंहार की तरह है कि इस देश में रोशनी उन पहाड़ों से आई थी जहां मेरे पड़ोसी ने मात खाई थी। पृष्ठ संख्या 207, मगर फिर मैं वहीं चला गया, अपने जुनून के अंधेरे में फूहड़ इरादों के हाथों चला गया। वहां बंजर मैदान कंकालों की नुमाइश कर रहे थे, गोदाम अनाज से भरे पड़े थे और लोग भूखों मर रहे थे। मैंने महसूस किया मैं वक्त के एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा हूँ। अब ऐसा वक्त आ गया है जब कोई किसी का झुलसा हुआ चेहरा नहीं देखता है, अब ना तो कोई किसी का खाली पेट देखता है, न थरथराती हुई टांगे और न ढला हुआ सूर्यहीन कंधा देखता है। हर आदमी सिर्फ अपना धंधा देखता है। सबने भाईचारा भुला दिया है। आत्मा की सरलता को मारकर मतलब के अंधेरे में एक राष्ट्रीय मुहावरे की बगल में सुला दिया है। सहानुभूति और प्यार अब ऐसा छलावा है जिसके जरिए एक आदमी दूसरे को अकेले अंधेरे में ले जाता है और उसकी पीठ में छुरा भोंक देता है, ठीक उस मोची की तरह जो चौक से गुजरते हुए देहाती को प्यार से बुलाता है और मरम्मत के नाम पर रबर के तल्ले में लोहे की 3 दर्जन फुल्लियाँ ठोक देता है और उसके नहीं नहीं के बावजूद डपट कर पैसा वसूलता है। पृष्ठ संख्या 208, गरज यह कि अपराध अपने यहाँ एक ऐसा सदाबहार फूल है जो आत्मीयता की खाद पर लाल भड़क फूलता है। मैंने देखा कि इस जनतांत्रिक जंगल में हर तरफ हत्याओं के नीचे से निकलते हैं हरे हरे हाथ और पेड़ों पर पत्तों की जुबान बनकर लटक जाते हैं। वह ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे सुनकर नागरिकता की गोधूली में घर लौटते हुए मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने किसी चीज को सही जगह नहीं रहने दिया है, न संज्ञा, न विशेषण, न सर्वनाम। एक समूचा और सही वाक्य टूट कर बी खा र गया है। उनका व्याकरण इस देश की सिराओं में छिपे हुए कारकों का हत्यारा है। उनकी सख्त पकड़ के नीचे भूख से मरा हुआ आदमी इस मौसम का सबसे दिलचस्प विज्ञापन है और गाय सबसे सटीक नारा है। वह खेतों में भूख और शहरों में अफवाहों के पुलिंदे फेंकते हैं, देश और धर्म और नैतिकता की दुहाई देकर। पृष्ठ संख्या 209, कुछ लोगों की सुविधा दूसरों की हाय पर सेंकते हैं। वह जिसकी पीठ ठोंकते हैं उसके रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। वह मुस्कुराते हैं और दूसरे की आंख में झपटती हुई प्रतिहिंसा करवट बदल कर सो जाती है। मैं देखता रहा देखता रहा। हर तरफ ऊब थी, संशय था, नफरत थी, मगर हर आदमी अपनी जरूरतों के आगे असहाय था। उसमें सारी चीज़ों को नए सिरे से बदलने की बेचैनी थी, रोष था, लेकिन उनका गुस्सा एक तथ्यहीन मिश्रण था, आग और आंसू और हाय का। इस तरह एक दिन जब मैं घूमते घूमते थक चुका था, मेरे खून में एक काली आंधी दौड़ लगा रही थी, मेरी असफलताओं में सोए हुए वाशी इरादों को झकझोर कर जगा रही थी, अचानक नींद की असंख्य परतों में डूबते हुए मैंने देखा कि मेरी उलझनों के अंधेरे में एक हमशक्ल खड़ा है। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? पृष्ठ संख्या 210, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुमने पहचाना नहीं? मैं हिंदुस्तान हूँ। हाँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। वह हंसता है ऐसी हंसी कि दिल दहल जाता है, कलेजा मुंह को आता है और मैं हैरान हूँ। यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मुझे छुओ, मुझे जियो, मेरे साथ चलो, मेरा यकीन करो, इस दलदल से बाहर निकलो। सुनो, तुम चाहे जिसे चुनो मगर इसे नहीं, इसे बदलो। मुझे लगा आवाज जैसे किसी जलते हुए कुएं से आ रही है, एक अजीब सी प्यार भरी गुर्राहट जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छोने को दूध पिला रही है और साथ ही किसी मेमने का सिर चबा रही है। मेरा सारा जिस्म थरथरा रहा था, उसकी आवाज में असंख्य नरकों की घृणा भरी थी। वह एक एक शब्द चबा चबा कर बोल रहा था, मगर उसकी आंख गुस्से में भी हरी थी। वह कह रहा था, तुम्हारी आंखों के चकनाचूर आईनों में। पृष्ठ संख्या 211, वक्त की बदरंग छायाएं उल्टी कर रही हैं और तुम पेड़ों की छाल गिनकर भविष्य का कार्यक्रम तैयार कर रहे हो। तुम एक ऐसी जिंदगी से गुजर रहे हो जिसमें ना कोई दुख है ना सुख है। तुम अपनी शापित परछाई से टकराकर रास्ते में रुक गए हो। तुम जो हर चीज अपने दांतों के नीचे खाने के आदी हो, चाहे वह सपना हो अथवा आजादी हो, अचानक इस तरह क्यों चुक गए हो? वह क्या है जिसने तुम्हें बर्बरों के सामने अदब से रहना सिखलाया है? क्या यह विश्वास की कमी है जो तुम्हारी भलमनसाहत बन गई है, या कि शर्म अब तुम्हारी सहूलियत बन गई है? नहीं, सरलता की तरह इस तरह मत दौड़ो। उसमें भूख और मंदिर की रोशनी का रिश्ता है, वह बनिए की पूंजी का आधार है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस उलझी हुई दुनिया में आसानी से समझ में आने वाली चीज़ सिर्फ दीवार है, और यह दीवार अब तुम्हारी आदत का हिस्सा बन गई है, इसे झटक कर अलग करो। पृष्ठ संख्या 212। अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो, मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। सुनो, आज मैं तुम्हें वह सत्य बतलाता हूँ जिसके आगे हर सच्चाई छोटी है। इस दुनिया में भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है, मगर तुम्हारी भूख और भाषा में यदि सही दूरी नहीं है तो तुम अपने आप को आदमी मत कहो, क्योंकि पशुता सिर्फ पूँछ होने की मजबूरी नहीं है, वह आदमी को भी वहीं ले जाती है जहाँ भूख सबसे पहले भाषा को खाती है। वक्त सिर्फ उनका चेहरा बिगाड़ता है जो अपने चेहरे की राख दूसरों की रुमाल से झाड़ता है। वह अपना हाथ मैला होने से डरता है। वह एक नहीं 11 कायरों की मौत मरता है। और सुनो, नफरत और रोशनी सिर्फ उसके हिस्से की चीज़ है जिसे जंगल के हाशिए पर जीने की तमीज़ है। इसलिए उठो और अपने भीतर, पृष्ठ संख्या 213, सोए हुए जंगल को आवाज़ दो, उसे जगाओ और देखो कि तुम अकेले नहीं हो और ना किसी के मोहताज हो। लाखों हैं जो तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं, वहाँ चलो, उनका साथ दो और इस तिलस्म का जादू उतारने में उनकी मदद करो, और साबित करो कि वह सारी चीज़ें अंधी हो गई हैं जिनमें तुम शरीक नहीं हो। मैं पूरी तत्परता से उसे सुन रहा था। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, यानी कि एक के बाद दूसरा विकल्प चुन रहा था, मगर मैं हिचक रहा था क्योंकि मेरे पास कुल जमा थोड़ी सुविधाएं थी जो मेरी सीमाएं थी। यद्यपि यह सही है कि मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूं, मुझमें भी आग है, मगर वह भभक कर बाहर नहीं आती क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ एक पूंजीवादी दिमाग है जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता आहिस्ता। पृष्ठ संख्या 214। कुछ इस तरह की चीजों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह की कांख भी ढकी रहे, और विरोध में उठे हुए हाथ भी मुट्ठी भी तनी रहे, और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। और यही वजह है कि बात फैलने की हद तक आते आते रुक जाती है, क्योंकि हर बार चंद टुच्ची सुविधाओं की लालच के सामने अभियोग की भाषा चूक जाती है। मैं खुद को कुरेद रहा था, अपने बहाने उन तमाम लोगों की सफलताओं को सोच रहा था जो मेरे नज़दीक थे। इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को खनोच रहा था, नोच रहा था। पूरे समाज की सीवन उधेड़ते हुए मैंने आदमी के भीतर की मैल देख ली थी। मेरा सिर भिन्ना रहा था, मेरा हृदय भारी था, मेरा शरीर इस बुरी तरह थका था कि मैं अपनी तरफ घूरते हुए उस चेहरे से थोड़ी देर के लिए बचना चाह रहा था जो अपनी पैनी आँखों से मेरी बेबसी और मेरा उथलापन ठाह रहा था। प्रस्तावित भीड़ में शरीक होने के लिए अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया था। पृष्ठ संख्या 215। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और मैं जेब में जूतों का टोकन और दिमाग में ताजे अखबार की कतरन लिए हुए धड़ाम से चौथे आम चुनाव की सीढ़ियों से फिसलकर मतपेटियों के गच्च अंधेरे में गिर पड़ा। नींद के भीतर यह दूसरी नींद है और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, सिर्फ एक शोर है जिसमें कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। शासन, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, राष्ट्र, धर्म, देश हित, हिंसा, अहिंसा, सैन्य शक्ति, देशभक्ति, आज़ादी, विसा, वाद, बिरादरी, भूख, भीख, भाषा, शांति, क्रांति, शीत, युद्ध, एटम बम, सीमा, एकता, सीढ़ियाँ, साहित्यिक पीढ़ियाँ, निराशा, झाए झाए, खाए खाए, हाय हाय, साय साय, मैंने कानों में ठूंस ली उंगलियां और अंधेरे में गाड़ दी है आँखों की रोशनी। सब कुछ अब धीरे धीरे खुलने लगा है। मत वर्षा के इस दादुर शोर में मैंने देखा हर तरफ रंग बिरंगे झंडे फहरा रहे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए गुट के गुट टकरा रहे हैं। वो एक दूसरे से दाता किलकिल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर दूर बिल बिल कर रहे हैं। हर तरफ तरह तरह के जंतु हैं श्रीमान, किंतु हैं। पृष्ठ संख्या 216 मिस्टर परंतु हैं। कुछ रोगी हैं, कुछ भोगी हैं, कुछ हिजड़े हैं, कुछ जोगी हैं। तिजोरियों के प्रशिक्षित दलाल हैं, आँखों के अंधे हैं, घर के कंगाल हैं। गूंगे हैं, बहरे हैं, उथले हैं, गहरे हैं। गिरते हुए लोग हैं, अकड़ते हुए लोग हैं, भागते हुए लोग हैं, पकड़ते हुए लोग हैं। गरज यह कि हर तरह के लोग हैं। एक दूसरे से नफरत करते हुए वे इस बात पर सहमत हैं कि इस देश में असंख्य रोग हैं और उनका एकमात्र इलाज चुनाव है। लेकिन मुझे लगा कि विशाल दलदल के किनारे बहुत बड़ा अधमरा पशु पड़ा हुआ है। उसकी नाभि में एक सड़ा हुआ घाव है जिससे लगातार भयानक बदबूदार मवाद बह रहा है। उसमें जाति और धर्म और संप्रदाय और पेशा और पूंजी के असंख्य कीड़े किलबिला रहे हैं और अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी